तो आप लोग जानते हैं आज है विशेष दिन, क्या है? भीष्माष्टमी। तो भीष्माष्टमी का अर्थ क्या है? भीष्म देव की विषय में कुछ घटना हुई होगी क्या? नहीं पता। पहले मैं सोचा करता था कि आविर्भाव दिवस होगा भीष्म देव का, लेकिन फिर जब महाभारत में मैंने पढ़ा तो ये जो तिथि है ये जो है उनके तिरोभाव की तिथि है। तो इसका जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में भी काफी विस्तार से आता है और उनकी प्रार्थना भी प्राप्त होती है। भीष्म देव प्रार्थना करते हैं और कृष्ण का दर्शन करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं। तो हाँ वो आसानी है, ये देर लगेगी निकालने में रखने में, आसानी होगी कि पेस बदलेंगे ना तो उसको ठीक है। इधर से मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, ऐसे ठीक है। तो आप लोग सुने महाभारत से जो है जैसा वर्णन है, भीष्मदेव जो है महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और बाणों की शैया में वो लेटे हुए हैं। बाण उनके शरीर में 8 बार हो चुके हैं और ये बाण जो है अर्जुन के ही हैं और किसी के बाण नहीं है। महाभारत का जो युद्ध था 18 दिनों तक चला था, लेकिन 10वें दिन उनकी बाणों की शैया हुई भीष्म देव की। तो महाभारत का जब 10वां दिन था उस समय अर्जुन को आदेश दिया गया था कि वे भीष्म के ऊपर बाण चलाएं और अर्जुन उनके ऊपर बाण नहीं चलाना चाहते थे कि अपने पितामह जिनकी गोद में वो हमेशा खेले और खाते रहे उनके शरीर में बाण चलाना अर्जुन के लिए, अर्जुन जैसे महात्मा के लिए बहुत कठिन कार्य था और अर्जुन के ही बाण उनके शरीर में 8 बार हो सकते थे और किसी के बाण नहीं। शिखंडी तो केवल देखने के लिए था कि वो बाण चला रहा है और भीष्म देव कह रहे थे कि शिखंडी के बाण तो मेरे शरीर में खरोंच भी पैदा नहीं कर रहे हैं। शिखंडी के बाण उनके शरीर में खरोंच भी पैदा नहीं करते हैं और कहते हैं अर्जुन के बाण, ये अर्जुन के बाण हैं जो मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं, मेरे शरीर के 8 बार हो रहे हैं। और फिर एक ऐसा भी बिंदु आया कि अर्जुन के बाण भीष्म जी के शरीर में 8 बार हो गए, इतने अधिक बाण कि एक अंगुल की भी जगह नहीं रही, एक अंगुल की भी जगह नहीं रही जहां बाण 8 बार ना हुआ हो भीष्म देव के शरीर में। तब फिर उन्होंने जो है कुछ विशेष दिशा निश्चित की कि किस दिशा में उनका सिर रहेगा और उन्होंने रथ से अपने शरीर को गिराया, विशेष दिशा में अपने सिर को जो है रखने के लिए अपना शरीर गिराया रथ से और उनका शरीर जमीन में नहीं गिरा क्योंकि बाण 8 बार थे तो बाणों के ऊपर ही जो है उनका शरीर जो है गिरा। इस प्रकार के जो है उनकी बाणों की शैया हुई। तो ये महाभारत का 10वां दिन था और उसके बाद फिर 8 दिन तक युद्ध और चला। महाभारत के 18 दिन जब पूरे हो गए उसके बाद फिर कृष्ण के साथ युधिष्ठिर महाराज और जितने भी ऋषि हैं और जितने राजर्षि हैं वो सब एकत्रित हुए और भीष्म देव से जो है ज्ञान प्राप्त किया। तब सुने ये कथा जन्मेजय सुन रहे हैं जो परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, श्रीमद् भागवत सुनते हैं परीक्षित महाराज, है ना, किससे सुनते हैं? सुखदेव गोस्वामी से। और ये महाभारत की कथा सुन रहे हैं जन्मेजय राजा जन्मेजय, किससे सुन रहे हैं? वैशंपायन, वैशंपायन व्यास जी के शिष्य हैं, उनसे सुन रहे हैं। तो जन्मेजय पूछते हैं कि हे विप्रवर, कुरुकुल के वीर भीष्म जी जब वीरों के सोने योग्य बाण शैया पर सो गए, ये वीरों की शैया है, बाणों की शैया वीरों की शैया है, वीरों की शैया बाण शैया पर सो गए और पांडव लोग उनकी सेवा में उपस्थित रहने लगे, तब पितामह महाज्ञानी राजा युधिष्ठिर ने उनके मुख से धर्म का उपदेश सुनकर अपने समस्त संशयों का समाधान जान लेने के पश्चात दान की विधि श्रवण करके धर्म और अर्थ के विषय में सारे संदेह दूर हो जाने पर जो और कोई कार्य किया हो उसे मुझे बताने की कृपा करें। जन्मेजय कह रहे हैं कि मुझे बताइए कि जब सब सुन लिया फिर क्या हुआ। तो ये नहीं कह रहे कि शरीर छोड़ा, मुझे आप बताइए कैसे शरीर छोड़ा। कहने का मतलब है कि शरीर कैसे छोड़ा उन्होंने, तो ये भी मुझे बताइए। तो वैष्णव भाई जी ने कहा जन्मे जाए सब धर्मों का उपदेश करने के पश्चात जब भीष्म जी चुप हो गए तो दो घड़ी तक सारा राजमंडल पट पर अंकित किए हुए चित्र के समान स्तब्धता हो गया। जब भीष्म जी ने उपदेश किया तो फिर चुप हो गए, चुप हो गए। ये भी नहीं कहा कि कोई प्रश्न है क्या, किसी को कोई प्रश्न है, कोई समीक्षा। प्रवचन देने के बाद हम लोग बोलते हैं ना कोई प्रश्न है या समीक्षा है, तो भीष्म जी ने कुछ प्रश्न या समीक्षा के लिए भी नहीं कहा कि कोई करे, और वो क्या हो गए, चुप हो गए। भीष्म जी चुप हो गए है ना। तो अगर वो चुप हो गए और वो नहीं कह रहे हैं कि कोई प्रश्न करे, कोई समीक्षा करे, या कोई आदेश भी नहीं दे रहे हैं, तो वो उनके लिए तो ठीक उचित है, क्योंकि बाणों की सजा में अगर वो लेटे हुए हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना कष्ट होगा उनके शरीर में, है ना। लेकिन हम अगर ऐसे चुप हो जाएं, कुछ बोले नहीं, तो वो शोभा नहीं देता। मैं कुछ तो मतलब इस समाप्ति का, प्रवचन की समाप्ति का कुछ संकेत करूंगा, कुछ तो बोलूंगा, या प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न है बोलूंगा, कोई समीक्षा है कुछ तो बोलूंगा, मुझे तो बोलना चाहिए। भीष्म जी नहीं बोले, चुप हो गए। और कितनी देर तक चुप हुए, दो घड़ी तक चुप हो गए। दो घड़ी मतलब
48 मिनट,
एक मुहूर्त तक चुप हो गए। और सारा राजमंडल में जितने राजा लोग थे पट पर अंकित किए हुए चित्र के समान, जैसे कपड़े में जो है चित्र होता है ना किसी व्यक्ति का, तो वो कैसा होता है चित्र, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, ऐसे सब राजा लोग 48 मिनट तक कोई नहीं हिल रहा है, सब चुप, बिल्कुल मतलब गति नहीं, किसी की गति नहीं है, सब लोग चुप रहे। अभून मुहूर्तम स्थिमितम सर्वे सर्वं तंद्राज मंडलम तोष्णीं भूते ततस्तस्मिन् पटे चित्रम वार्पितम। दो घड़ी तक ध्यान करने के पश्चात व्यास जी ने वहां सोए हुए गंगा नंदन महाराजा भीष्म जी से इस प्रकार कहा। तब व्यास जी ने मौन तोड़ा, सभी मौन है, भीष्म जी भी चुप हैं, सब लोग चुप हैं, तो किसने मौन को तोड़ा, व्यास जी ने तोड़ा। मुहूर्तमेव ध्यात्वा व्यासा सत्यवती सुताम निपंशयानम गांगेयम इदम माहे वचस्तताम। राजन अब कुरुराज युधिष्ठिर शांत और संदेह रहित हो चुके हैं। अब युधिष्ठिर महाराज कभी कोई संशय नहीं रहा कि युधिष्ठिर महाराज राज्य करने के लिए तैयार नहीं थे, और भीष्म जी ने उनको आदेश दिया था कि आप राज्य करिए, तो युधिष्ठिर ने कितने कितने प्रश्न पूछे, तो अभी अब युधिष्ठिर महाराज का कोई संशय नहीं रहा। तो व्यास जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज का कोई संशय नहीं रहा, और कहने का अर्थ है कि अब राज्य करने के लिए तैयार हैं, आप इनको आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर संदेह रहित हो चुके हैं और अपना अनुसरण करने वाले समस्त भाइयों, राजाओं और श्री कृष्ण के साथ आपकी सेवा में बैठे, आप इन्हें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। कौन कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, भीष्म जी कह रहे हैं कि आप इनको हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। 48 मिनट तक बिल्कुल चुप रहे सब लोग। व्यास देव के ऐसे कहने पर गंगा पुत्र भीष्म ने मंत्रियों से राजा युधिष्ठिर को जाने की आज्ञा दी। उस समय भीष्म जी ने मधुर वाणी में राजा से कहा, राजन अब तुम पुरी में प्रवेश करो और तुम्हारे मन की सारी चिंता दूर हो। अब कोई चिंता नहीं होती, मतलब भगवान कृष्ण ने भीष्म जी को इतना यश दिया कि कृष्ण के उपदेश से भी युधिष्ठिर महाराज को समाधान नहीं हुआ, और व्यास देव के उपदेश से भी उनको समाधान नहीं हुआ, तो भीष्म जी के पास आए और भीष्म जी से उपदेश कराया, और अब जो है उनका समाधान हुआ है, अब राज्य करने के लिए तैयार है। तो भीष्म जी बोले, क्या बोले, कि तुम पुरी में प्रवेश करो, अब तुम्हारे मन की कोई चिंता नहीं होना चाहिए, वाचचेन मधुरम नृपम शांतन वो नृप प्रविश स्वपुरी राजन वेतुते वमान स्वज्वरा। राजन तुम राजा यति की भांति श्रद्धा और इंद्रिय संयम पूर्वक बहुत से अन्न और पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त भांति भांति के यज्ञों द्वारा यजन करो। क्षत्रिय धर्म तत्पर रहकर देवताओं और पितरों को तृप्त करो, तुम अवश्य कल्याण के भागी होगे, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर होनी चाहिए। समस्त प्रजा को प्रसन्न रखो, मंत्री आदि को सांत्वना दो, सुहृदों का फल और सत्कारों द्वारा यथा योग्य सम्मान करते रहो। जैसे मंदिर के आसपास के फले हुए वृक्ष पर बहुत से पक्षी आकर बसेरे लेते हैं, मंदिर के आसपास के फले हुए वृक्ष पर, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हितैषी तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करें। अनुत्वाम तात जीवन्तु मित्राणि सुहृदस्तथा चेतस्थाने स्थितं वृक्षं फलवन्तं इव द्विजाम्। जब सूर्य दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण पर आ जाए उस समय तुम फिर हमारे पास आना। तो सूर्य उस समय दक्षिणायन पर है, तो दक्षिणायन सूर्य जो है दक्षिणायन पर होता है कितने समय तक, 6 महीने तक, और उत्तरायण भी 6 महीने का होता है। तो उत्तरायण कब शुरू होता है, मकर संक्रांति के दिन है ना, 14 जनवरी या 15 जनवरी, मतलब करीब पर निश्चित है 14 या 15 जनवरी को ये निश्चित होता है ना। और ये महाभारत युद्ध जो जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन है ना, अग्रहायण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शुरू हुआ था है ना। तो वो जो है दिसंबर के महीने में पड़ती है ना, तो वो समय था महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ था है ना, महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो उस दिन से जो है वो दक्षिणायन का समय चल रहा था है ना। तो भीष्म जी कह रहे हैं कि उत्तरायण का जब समय आए तो मैं शरीर छोड़ूंगा, तब आप आना मेरे पास, ठीक है ना। और उत्तरायण तो शुरू होता है 14 जनवरी को, लेकिन गीता में भगवान ने क्या कहा है, उत्तरायण ही पर्याप्त नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, अग्नि ज्योति रहा शुक्ला सन्मासा उत्तरायणम। अग्नि का समय होना चाहिए, फिर ज्योति का समय होना चाहिए, फिर दिन का समय होना चाहिए, फिर शुक्ल पक्ष का भी समय होना चाहिए, फिर उत्तरायण का समय होना चाहिए। तो उत्तरायण के अंदर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चलते रहते हैं है ना। एक उत्तरायण में कितने बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आते हैं, 6 बार कृष्ण पक्ष आते हैं, 6 बार शुक्ल पक्ष आते हैं, तो शुक्ल पक्ष का भी समय होना चाहिए। तो 14 जनवरी को जब उत्तरायण शुरू होता है उस समय जो पक्ष है वो कृष्ण पक्ष चलता है ना। तो इसलिए उन्होंने मतलब ये भी कहा कि जो है उसके साथ साथ शुक्ल पक्ष लेना चाहिए है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उस समय तुम फिर आगंतव्यम च भवदा समय मम पार्थिव विनिवृत्ते दिन करे प्रवृत्ते चोतरायणे। तब बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर पितामह को प्रणाम करके परिवार सहित हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उन कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने राजा धृतराष्ट्र और पतिव्रता गांधारी देवी को आगे करके समस्त ऋषियों भाइयों श्री कृष्ण नगर और जनपद के लोगों और बड़े बूढ़े मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया, सबके साथ गए। तो वैशंपायन जी कहते राजन हस्तिनापुर में जाने के बाद राजा धृष्टि ने नगर और जनपद के लोगों का यथोचित सम्मान करके उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। इसके बाद जिन स्त्रियों के पति और वीर पुत्र युद्ध में मारे गए थे उन सबको बहुत सा धन देकर राजा धृष्टि ने धैर्य बंधाया। ये सब जो है उनकी जिम्मेदारी है। फिर युधिष्ठिर ने राजाभिषेक हो जाने के पश्चात अपना राज्य पाकर मंत्री आदि समस्त लोगों को अपने अपने पद पर स्थापित करके ब्राह्मणों से उत्तम आशीर्वाद प्राप्त किया। 50 रात तक उस उत्तम नगर में निवास करके तो 50 रात तक जो है उन्होंने निवास किया। तो जब भीष्म जी की शरशय्या हुई थी तो उस दिन से, खैर अभी हम विचार करेंगे बाद में, तो 50 रात तक उस नगर में, उत्तर नगर में निवास कर गई। कौन सा नगर है? हस्तिनापुर। युधिष्ठिर को भीष्म जी के बताए हुए समय का स्मरण हुआ। उन्होंने ये देखकर के सूर्यदेव दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण में आ गए हैं, तो याजकों से घिर कर हस्तिनापुर से बाहर निकले। युधिष्ठिर ने भीष्म जी का दाह संस्कार करने के लिए सब सामान ले लिया। भीष्म जी ने कहा था कि अब आओगे तो सब सामग्री लेकर के आना। तो युधिष्ठिर महाराज सब सामग्री लेकर के अब जो है चल रहे हैं। तो क्या है? घृत है, माला है, गंध, रेशमी वस्त्र, चंदन, अगुरु, काला चंदन और श्रेष्ठ पुरुष के धारण करने योग्य मालाएं, नाना प्रकार के रत्न, ये सब लिए साथ में है। और युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र को अपने साथ में लेके चलते हैं, गांधारी देवी को, माता कुंती को और भाइयों को आगे करके। पीछे से भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं, उनके श्री कृष्ण पीछे चल रहे हैं सेवक की तरह। और विदुर जी और युधिष्ठिर और सात्यकी उनके पीछे चल रहे हैं। वे राजा युधिष्ठिर राजोचित उपकरण और वैभव के भारी ठाट बाट से संपन्न थे। उनकी स्तुति की जा रही थी। पूरे राजा के सब चिन्ह धारण करके युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म जी की इच्छा है। भीष्म जी अपना शरीर छोड़ते समय राजा युधिष्ठिर का जो है पूरा वैभव देखना चाहते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर की इच्छा थोड़ी है, वो अपने प्रसन्नता के लिए नहीं ये सब करना चाहते हैं। दुर्योधन की तरह उनका भाव नहीं है। युधिष्ठिर महाराज का तो भाव है भीष्म जी को प्रसन्न करने का। तो भीष्म जी की प्रसन्नता के लिए युधिष्ठिर महाराज अपना पूरा वैभव लेकर के चल रहे हैं और उनकी स्तुति भी हो रही है। भीष्म जी के द्वारा स्थापित की हुई तीनों अग्नियों को आगे करके स्वयं पीछे पीछे चल रहे हैं। युधिष्ठिर पीछे पीछे भीष्म जी की तीन अग्नियां। वे इंद्र की भांति अपनी राजधानी से बाहर निकले और कुरुक्षेत्र में भीष्म जी के पास जा पहुंचे। उस समय वहां बुद्धिमान व्यास जी और देवर्षि नारद और असित देवल ऋषि उनके पास बैठे हुए थे। उपास्यमान व्यासेन पाराशरेण धीमता नारदेन चन्न राजर्षे देवलेन आसितेन च। नाना देशों से आए हुए राजा जो मरने से बच गए थे, रक्षक बन करके चारों ओर महात्मा भीष्म की रक्षा करते थे। क्योंकि वहां पर तो जो है जो मांस खाने वाले जानवर है ना, वो आएंगे, तो बहुत आवश्यक है कि भीष्म जी की रक्षा भी की जाए। युद्ध भूमि में क्या है कि जो योद्धा मारे जाते हैं तो उनका मांस खाने वाले जो पशु हैं वो आते हैं और मांस खाते हैं, या गिद्ध भी पक्षी हैं वो भी मांस खाने के लिए आते हैं, तो रक्षा के लिए भी कुछ लोग होने चाहिए। युद्ध राजा युधिष्ठिर दूर से ही बाण से यह पर सोए हुए भीष्म जी को देखकर भाइयों से रथ से उतर पड़े। पहले उन्होंने पितामह को प्रणाम किया, उनके उसके बाद व्यास आदि ब्राह्मणों को मस्तक झुकाया, फिर उन सबने भी उनका अभिनंदन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ऋतुजों भाइयों और ऋषियों से घिरे और बाण से परसोए हुए भीष्म जी से भाइयों से इस प्रकार बोले। अब क्या बोले युधिष्ठिर? गंगा नंदन महाबाहो, मैं युधिष्ठिर आपकी सेवा में उपस्थित हूं और आपको नमस्कार करता हूं। यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो तो आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। उनकी आंखें बंद हैं तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि आपको मेरी आवाज अगर सुनाई देती हो तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में आ गया हूं। युधिष्ठिर हम नृपते नमस्ते जहानवी सुतै श्रृणोसी चेन महाबाहो ब्रूहि किं करवाणि ते। राजन प्रभो, आपकी अग्नियों और आचार्यों ब्राह्मणों और ऋतुजों को साथ लेकर मैं अपने भाइयों के साथ ठीक समय पर आ पहुंचा हूं। आपके पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी अपने मंत्रियों के साथ उपस्थित हैं। महापराक्रमी श्री कृष्ण भी यहां आए हुए हैं। पुत्रश्च ते महातेजा धृतराष्ट्रो जनेश्वरः उपस्थिता सहा मात्यो वासुदेवश्च वीर्यवान्। आपके पुत्र धृतराष्ट्र, कि पितामह है ना भीष्म, तो धृतराष्ट्र उनके पुत्र के समान। युद्ध में मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरु जंगल की प्रजा भी उपस्थित है। आप आंखें खोलिए और इन सबको देखिए। आपके कथन के अनुसार इस समय के लिए जो कुछ संग्रह करना आवश्यक था वो सब जुटाकर मैंने यहां पहुंचा लिया है। सभी उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध कर लिया गया है। अब आपको क्या करना है, आज्ञा देना है कि हम सब लोग क्या करें, आपकी सेवा में हम सब लोग उपस्थित हैं। आप देखिए हम सब लोगों को आज्ञा दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर गंगानंदन भीष्म जी ने आंखें खोलकर अपने को सब ओर से घेर कर खड़े हुए संपूर्ण भरत वंशियों को देखा। फिर प्रवचन कुशल भीष्म जी ने युधिष्ठिर की विशाल भुजा हाथ में लेकर गंभीर वाणी में यह वचन कहा। भीष्म जी क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर की भुजा को अपने हाथ में दिया। ये प्रेम का लक्षण है, हाथ को हाथ में लेकर के बात करना है। तो युधिष्ठिर की भुजा को अपने हाथ में लेकर के और ये कहा, कुंती नंदन सौभाग्य की बात है कि तुम मंत्रियों सहित यहां आ गए। सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर लौट चुके हैं। इन तीखी अग्रभाग वाले बाणों के सैया पर शयन करते हुए मुझे आज 58 दिन हो गए। कितने दिन हो गए हैं, 58 दिन हो गए हैं, किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। 58 दिन हो चुके हैं, अभी 58 दिन कैसे हो चुके हैं। वो कह रहे हैं भीष्म जी, इस समय माघ का महीना और शुक्ल पक्ष चल रहा है। माघ शुक्ला अष्टमी है। माघो यम समनु प्राप्तो मासा सौम्यो धिष्ठिर त्रिभाग शेष पक्षो यम शुक्लो भवितुम अर्हति। तो ये माघ शुक्ला अष्टमी का दिन है, भीष्म जी कह रहे हैं, है ना, और 58 दिन कह रहे हैं। तो 58 दिन अगर हम विचार करें तो कैसे होते हैं 58 दिन, उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ, उस दिन से, क्योंकि अग्रहण शुक्ल एकादशी के दिन युद्ध हुआ था। तो अगर उस तरह से हम गणना करें तो अग्रहण शुक्ल एकादशी से अग्रहण की पूर्णिमा तक 5 दिन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अग्रहण के बाद कौन सा महीना आता है, पौष का, पौष के 30 दिन कितने हो गए, 35 दिन हो गए, अच्छा 35 दिन हो गए। और उसके बाद अग्रहण का महीना, अग्रहण के अमावस्या तक 15 दिन हो गए, कितना हुआ, 50 हो गया, 50 हो गया ना। और फिर अमावस्या के बाद जो शुक्ल अष्टमी तक, शुक्ल पक्ष शुरू हुआ अष्टमी तिथि, 8 दिन हुए, तो 50 और 8 58, सही है ना, 58 दिन होते हैं। यानी 5 + 30 + 15 + 8 58 दिन। तो भीष्म जी 58 दिन जो कह रहे हैं तो वो बाणों की सैया उस समय से मान रहे हैं जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ। लेकिन वैसे बाणों की सैया तो 10वें दिन हुई थी, है ना, 10वें दिन हुई, लेकिन वो उस समय से मान रहे हैं। क्यों उस समय से मान रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में बाण लगने शुरू हो गए थे उसी दिन से, है ना। तो बहुत से बाण उनको मतलब लगे हुए थे और वो नहीं निकालते थे, वो नहीं निकालते थे, तो बाण लगे थे और उसी में ही वो युद्ध करते रहे। और 10वें दिन जो है फिर बाण इतने लग गए पूरे शरीर में कि पूरा शरीर भर गया, जगह जरा सी एक अंगुल की भी जगह नहीं रही पूरे शरीर में, कहीं भी जहां बाण ना लगा हो सब आर पार बाण छिदे थे। तो भीष्म जी जो है वो 58 दिन जो गणना कर रहे हैं बाणों की सजा की, वो समय कर रहे हैं। और देखिए सहन करने की कितनी शक्ति। तो भीष्म जी कह रहे हैं 58 दिन हो गए। अष्ट पंचाशतम रात्र्या शयान अर्षाद में गताम सरेशो निशिताग्रेशो यथा वर्ष अशतम तथा। युधिष्ठिर से ऐसा कहकर भीष्म ने धृतराष्ट्र को पुकार कर उनसे ये वचन कहा। अब धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भीष्म जी, बोले राजन तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो, तुमने अर्थ तत्व का भी भली भांति निर्णय किया, अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं, क्योंकि तुमने अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने वाले बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है, उनके सत्संग से लाभ उठाया है। तुम चारों वेदों, संपूर्ण शास्त्रों और धर्मों का रहस्य पूर्ण रूप से जानते हो, समझते हो। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, जो कुछ हुआ है ये अवश्य होना था। कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। शोक किस बात का? तुम्हारे स्वपुत्र मारे गए तो यह अवश्य होना था। तुमने व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी सुन लिया है। ये पांडव जैसे राजा पांडव के पुत्र हैं, वैसे ही धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भी पुत्र हैं। ये सदा गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं। तुम धर्म में स्थित रहकर अपने पुत्रों के समान ही इनका पालन करो। धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, ये एक सम्मान की बात है कि धृतराष्ट्र से कह रहे हैं भीष्म जी की इनका पालन करो। अब तो ये आपका ही पालन करेगी, धृतराष्ट्र का ही पालन करेगी। अब धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, अब ये धृतराष्ट्र थोड़ी पालन करेंगे। लेकिन एक सम्मान के लिए जो ये कहा जाता है कि धृतराष्ट्र पालन करें पांच पांडवों का, और ये आपके अधीन है, ये आपकी आज्ञा के अधीन है। आप इनको जैसी आज्ञा देंगे वैसी करेंगे, इस तरह से आपकी आज्ञा का ये पालन करें पांच पांडव। धर्म का हृदय बहुत ही शुद्ध है, ये सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगे। मैं जानता हूं इनका स्वभाव बहुत कोमल है, ये गुरुजनों के प्रति बहुत भक्ति रखते हैं। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा थे, क्या थे तुम्हारे पुत्र? बड़े दुरात्मा थे, क्रोधी थे, लोभी थे, ईर्ष्यालु थे, दुराचारी थे, अतः उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तव पुत्रा दुरात्मानः क्रोध लोभ परायणां ईर्ष्या विभूता दुर्वृत्रास तान न शोचितुम अर्हसि। कोई गीता में भगवान की अशोच्यान न सोचा तुम, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, तो वास्तव में इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, ये दुष्ट लोग हैं। और भीष्म जी कह रहे हैं कि इनके लिए शोक मत करो, दुरात्मा क्रोधी लोभी। वैशंपायन जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर भीष्म ने महाबाहु भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब कृष्ण से बात कर रहे हैं भीष्म जी। भीष्म जी बोले, भगवान देव देवेश्वर देवता असुर सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। अपने तीन पगों से तीनों लोक नापने वाले, संघ चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण देव आपको नमस्कार है। भगवान देव देवेश सुरासुर नमस्कृत त्रिविक्रम नमस्तुभ्यम संघ चक्र गदाधर। आप ही वासुदेव, हिरण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट, अनुरूप, जीवात्मा और सनातन परमात्मा है। वासुदेव हिरण्यात्मा, पुरुषा, सविता, विराट, जीवभूतो अनुरूपस्त्वं परमात्मा सनातना। कमल नयन श्री कृष्ण पुरुषोत्तम वैकुंठ, आप सदा मेरा उद्धार करें और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। त्रायस्व पुंडरीकाक्ष पुरुषोत्तम नित्य सहम अनुजानी माम कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम। प्रभु आप ही जिनके परम आश्रय हैं उन पांडवों की सदा आप रक्षा कीजिए। देखो शरीर छोड़ रहे हैं लेकिन पांडवों की चिंता कर रहे हैं, और कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि इनकी आप सदा रक्षा करिए। क्यों? आपके द्वारा ही आपके आश्रित हैं, ये पांचों पांडव आपके आश्रित हैं। मैंने दुर्बुद्धि और मन दुर्योधन से कहा था कि जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म है, जहां धर्म है वहीं जय है। इसलिए बेटा दुर्योधन, तुम श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों के साथ संधि कर लो। ये संधि के लिए बहुत उत्तम अवसर आया है। जब भीष्म जी कह रहे हैं कि जब आप आए थे संधि प्रस्ताव के लिए, तो मैंने दुर्योधन से कहा था, क्या कहा था? कि बहुत अच्छा अवसर है, अभी भी बहुत बड़ी अवसर है, तुम्हारी रक्षा हो सकती है। इस प्रकार बार बार कहने पर भी उस मंद बुद्धि मूढ़ ने मेरी वो बात नहीं मानी और सारी पृथ्वी के वीरों का नाश कराकर अंत में स्वयं भी काल के गाल में चला गया। रक्षाचते पांडवेया भवान येषां परायणं उक्तवानस्मि दुर्बुद्धिं मंदं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनं तदा यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः वासुदेवेन तीर्थेन पुत्रसंज्ञां मे पांडव संधानस्य पराकालस् तवेति च पुनः पुनः न च मे तन्वचो मूढ़ा कृतवान् सा सुमन्दधि घातयत्वे पृथिवीं तथा सा निधनं गता। देव मैं आपको जानता हूं, आप यही पुरातन ऋषि नारायण हैं जो नर के साथ चिरकाल तक बदरिक आश्रम में निवास करते रहे। आप कौन है? नारायण ऋषि हैं जो नर ऋषि के साथ। तो हम बुजानाम हम देवम पुराणम ऋषि सत्तमम नरेण सहितम देव बदरियाम सुचरोचितम। देवर्षि नारद महातपस्वी व्यास जी ने भी मुझसे कहा था कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात भगवान नारायण और नर हैं जो मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। मुझसे कहा था, किसने कहा था? नारद मुनि ने कहा था, और किसने कहा था? व्यास जी ने कहा था, है ना। अर्जुन भी कहते हैं कि मुझसे बताया है, असतो देवलो व्यास स्वयं जय प्रवेश आहुस्ताम ऋषि सर्वे देवर्षे नारद तथा असतो देवलो व्यास स्वयं जय प्रवेश। भीष्म जी कहते हैं मुझसे भी बताया, अर्जुन कहते हैं मुझसे भी कहा, इन सब लोगों ने कहा। तथा मे नारद प्राह व्यासश्चतु महातपान नर नारायण आवेत संभूतो मनुजेश्वती। श्री कृष्ण अब आप आज्ञा दीजिए, मैं शरीर का परित्याग करूंगा, आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। समाम तम अनुजाने ही कृष्ण मोक्षे कले वरम त्वया हम समनुज्ञा तो गच्छेयम परमाम गतिम। श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वीपालक भीष्म जी मैं आपको हर्ष पूर्वक आज्ञा देता हूं, आप वसु लोक को जाइए, इस लोक में आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप नहीं हुआ है। अनुजाना में भीष्म त्वाम वसून प्राप्त ही पार्थिव न तेस्ते वृजनम किंचन हे लोके महादूते। राजर्षि आप दूसरे मारकंडे के समान पितृभक्त हैं, इसलिए मृत्यु विनीत दासी के समान आपके बस में हो गई है। पितृभक्तो श्री राजर्षि मारकंडे वापरा तेन मृत्यु स्तव वशे स्थितो भृत्यये भानता। वैशंपायन जी कहते हैं भगवान के ऐसा कहने पर गंगा नंदन भीष्म ने पांडव और धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र आदि सभी सुहृदों से कहा। किसने कहा? भीष्म जी ने कहा। किसने कहा? पांडवों और धृतराष्ट्र आदि सभी से कहा, सभी से कहा। क्या कहा? अब मैं प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं, तुम सब लोग इसके लिए मुझे आज्ञा दो। भीष्म जी आज्ञा मांगे, किस से आज्ञा मांगी? अब सबसे आज्ञा मांग रहे हैं, तुम लोग मुझे इसके लिए आज्ञा दो। तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। प्राणान उत्सृष्टुम इच्छामि तत्रानुज्ञातुम अर्हत है सत्येषु यातितव्यं वा सत्यम ही परमं बलम्। भरत वंशियों, तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना चाहिए, सदा अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए, और ब्राह्मण भक्त धर्मनिष्ठ और तपस्वी होना चाहिए। ये उपदेश। आन संशय परेर भाव्यम सदैव नेतात्म भी ब्रह्मण्य धर्मशील तपो नित्य भारत। ऐसा कहकर भीष्म जी ने अपने सब सुहृदों को गले लगाया। देखो, और युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहा, युधिष्ठिर तुम्हें सभी ब्राह्मणों की विशेषता विद्वानों की और आचार्य और ऋतियों की सदा ही पूजा करनी चाहिए। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि समस्त कौरवों से ऐसा कहकर शांतनु नंदन भीष्म जी दो घड़ी तक चुपचाप पड़े रहे। अभी दो घड़ी फिर अरे वो दो घड़ी तक चुपचाप, लेकिन किसी ने आंखें बंद नहीं की थी। दो घड़ी तक चुपचाप, दो घड़ी 48 मिनट तक चुपचाप, लेकिन आंखें नहीं किसी ने बंद की थी। यहां आंखें बंद कर रहे हैं आप लोग। दो घड़ी तक एव मुक्त कुरून सर्वान भीष्मा सांदन वस्तदा तुष्णे मभूव कौरव्या समूर्तम अरिंदम। तब मन सहित प्राण वायु को भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। इस तरह योगिक क्रिया द्वारा रोके हुए भीष्म जी के प्राण क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे। उस समय वहां एकत्र हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य की घटना हुई। व्यास आदि सभी महर्षियों ने देखा कि योग युक्त हुए भीष्म के प्राण उनके जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठते थे उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भी भर जाता था। क्या आश्चर्य! हरि बोल। अपने प्राणों को ऊपर उठा रहे हैं, तलवों से ऊपर उठा रहे हैं, तलवों से घुटने घुटने से और आगे ऊपर, और बाण निकलते जा रहे हैं और घाव भी भरता जा रहा है। आश्चर्य इदम आश्चर्य आसीचा मध्ये तेषां महात्मनां सैतैर्ऋषिभिः सर्वैः तदा व्यासादिभिः प्रभो यद्यन्वञ्चति गात्रं हि सप्रशान्तनु सुतस्तदा तत्तन्विशल्यं भवति योगियुक्तस्य तस्य वै। घाव भी भर जाता है, बाण भी जो आर पार हम निकल रहे हैं और घाव भी भरता जा रहा है। आश्चर्य। और इस प्रकार सबके देखते देखते शरीर क्षण भर में बाणों से रहित हो गया। एक क्षण कितना होता है? चार मिनट। एक मिनट चार मिनट का होता है, तो चार मिनट में पूरा शरीर बाणों से रहित हो गया, घाव से रहित हो गया, एक भी घाव नहीं और शरीर में एक भी बाण नहीं लगा है, जबकि सब आर पार है। आश्चर्य। थोड़ा है, ज्यादा? बहुत ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा आश्चर्य है। छड़े ने प्रेक्षताम तेषाम विशल्यासोभवत्तदाम तन्दृष्ट्वा विस्मिता सर्वे वासुदेव पुरोगमा सह तैर्मनि भी सर्वे तदा व्यास आदि दुर्नप। ये देखकर व्यास आदि समस्त मुनियों सहित श्री कृष्ण को भी बड़ा विस्मय हुआ। भगवान भी विस्मित होते हैं, ये जो है भगवान का ऐसा स्वभाव है। हालांकि भगवान के लिए कोई विस्मय नहीं, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। वो भी मनुष्य की लीला कर रहे हैं कि हमें भी विस्मित होना चाहिए और गुण देखना चाहिए कि भीष्म जी का कैसा आश्चर्य, भीष्म जी को मान करके कि उनका ही गुण है, तो भगवान विस्मित हो रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें विस्मित होना चाहिए, है ना। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राणों को सब ओर से रोक लिया, इसलिए वो उनका मस्तक फोड़कर आकाश में चला गया। प्राणों को यहां से नहीं निकलने दिया, है नौ द्वार है ना शरीर के, तो नौ द्वारों में से किसी एक द्वार से प्राण निकलते हैं। पापी के प्राण निकलते हैं मलमूत्र के द्वार से, तो मल द्वार से प्राण निकलते हैं तो मल का द्वार फट जाता है, और मल त्याग देता है वो पापी व्यक्ति, और मूत्र द्वार से निकलते तो मूत्र का द्वार फट जाता है, वो मूत्र त्याग देता है, लेकिन जो पुण्यात्मा है उनके प्राण ऊपर के सात में से किसी क्षेत्र से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं तो मुंह खुला रह जाता है, नासिका के किसी क्षेत्र से निकलते हैं तो वो तो खुले ही हैं पहले से, या आंखों से निकलते तो आंखें खुली रह जाती है ना। तो नौ द्वारों से प्राणों को नहीं निकलने दिया और प्राणों को ऊपर उठाए, यहां 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 और यहां पर लाए और यहां से फोड़ करके प्राण निकल गए, ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके प्राण निकल गए, है ना। तो गीता में भगवान ये बताते हैं ना कि प्राण किस तरह से, है ना। तो गीता में भगवान बताते हैं यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यदि योगी तिरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहण प्रवचे। तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण जो पालन करे तब वो ऐसा कर सकता है ना। सर्व द्वाराणि संयम में मनोहृदय निरोधजा मूर्धनि आधाय आत्मना प्राणम आचितो योग धारणा। तो मूर्धनि आधाय सब द्वारों को रोक करके मूर्धनि आधाय आत्मना प्राण। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामन स्मरण। तो ये विधि जो है वेदों में बताई गई है, लेकिन ये विधि जो है सबके लिए नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य का पालन कोई नहीं कर पाता है पूरी तरह से। तो ये विधि जो है भगवान कहते हैं कि तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षी, इस संक्षेप में ही इस विधि का मैं वर्णन करूंगा। तो भगवान ने संक्षेप में क्यों इस विधि का वर्णन किया? क्योंकि ये संभव नहीं है, कलयुग में संभव नहीं है। फिर क्षण भर में उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजी और साथ ही दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऊपर से देवताओं की दुंदुभियां बजी, यहां किसी ने भी दुंदुभी नहीं बजाई, ये तो शोक का अवसर था, लेकिन हर्ष का अवसर है देवताओं के लिए। देवता लोग हर्षित होकर के दुंदुभियां बजा रहे हैं और दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं ऊपर से। ये आज की घटना है, आज के दिन की घटना हुई। सिद्धों और ब्रह्मर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ और भीष्म जी को साधुवाद देने लगे। देव दुंदुभिना दशा पुष्प वर्ष भवन सिद्धा ब्रह्मर्षियश्च साधु साधुति हर्षिता। भीष्म जी का प्राण उनके ब्रह्म रंध्र से निकलकर बड़ी भारी उल्का की भांति आकाश में उड़ा और क्षण भर में अंतर्धान हो गया। महोल के वेज भीष्म मूर्ध देशा जनाधिप निस्तृत्याकाश माविश्य क्षण नंतर धीयत। इस प्रकार भरत वंश का भार उठाने वाले राजा भीष्म काल के अधीन हुए। तब बहुत से काष्ठ नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव विदुर और युधिष्ठिर ने चिता तैयार की और शेष सब लोग अलग खड़े होकर देखते रहे। राजा युधिष्ठिर और परम बुद्धिमान विदुर इन दोनों ने रेशमी वस्त्रों और मालाओं से कुरुनंदन गंगा पुत्र भीष्म को आच्छादित किया और चिता पर सुलाया। उस समय युधिष्ठिर ने उनके ऊपर उत्तम छत्र लगाया और भीमसेन अर्जुन श्वेत चमर और बिजन दुलाने लगे। बिजन का मतलब पंखा, चमर और पंखा डुलाने। नकुल सहदेव ने पगड़ी हाथ में लेकर भीष्म जी के मस्तक पर रखी। कौरव राज के रनिवास की स्त्रियां ताड़ के पंखे हाथ में लेकर भीष्म जी के सब ओर से हवा करने लगी। तब पांडवों ने विधि पूर्वक महात्मा भीष्म का पितृमेध कर्म संपन्न किया। अग्नि में बहुत सी आहुतियां दी गईं। साम गान करने वाले ब्राह्मण साम मंत्रों का गान करने लगे और धृतराष्ट्र आदि ने चंदन की लकड़ी, काली चंदन, सुगंधित वस्तुओं से भीष्म के शरीर को आच्छादित करके उनकी चिता में आग लगाई। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने इस चलती हुई चिता की प्रदक्षिणा की। इस प्रकार कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपनी स्त्रियों को साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित गंगा जी के तट पर गए। उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, असित देवल और श्री कृष्ण तथा नगर निवासी मनुष्य भी पधारे थे। वहां पहुंचकर उन क्षत्रियों ने और अन्य सब लोगों ने विधि पूर्वक महात्मा भीष्म को जलांजलि दी। उस समय कौरवों द्वारा अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा हो जाने पर गंगा देवी जल के ऊपर प्रकट हुई और शोक से बेहबल होकर रोदन और विलाप करती हुई कौरवों से कहने लगी। जल से जो है गंगा जी ऊपर आ गई, ये भी एक आश्चर्य है ना। उनके पुत्र का जो है जो हुआ देहांत हुआ तो गंगा जी जो है माता को कितना दुख होगा। तो जल से ऊपर निकली और विलाप करती कौरवों से कहने लगी, निष्पाप पुत्रों मैं जो कहती हूं उस बात को सुनो। भीष्म सदाचार से संपन्न थे, उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ कुल से संपन्न थे। भीष्म कुरुकुल वृद्ध पुरुषों के सत्कार करने वाले पिता के बड़े भक्त थे। हाय, पूर्व काल में परशुराम भी अपने दिव्य अस्त्र द्वारा जिस मेरे महापराक्रमी पुत्र को पराजित ना कर सके वो इस समय शिखंडी के हाथ से मारा गया, ये कितने कष्ट की बात है। गंगा जी अपना कष्ट बता रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि शिखंडी के हाथ से मारा गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, लेकिन गंगा जी ऐसा सोच रहे हैं तो वो विलाप कर रहे हैं। राजाओ अवश्य मेरा हृदय पत्थर या लोहे का बना है, तभी तो अपने प्रिय पुत्र को जीवित ना देकर आज ये फट नहीं जाता है। काशीपुरी के स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय एकत्र हुए, किंतु भीष्म ने एकमात्र रथ की सहायता से उन सबको जीतकर काशीराज की तीन कन्याओं का अपहरण किया था। हाय, इस पृथ्वी पर बल में जिसकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं, उसी को शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती। गंगा जी को जो है जो शोक हो रहा है वो इस बात का हो रहा है। किस बात का शोक हो रहा है? गंगा जी को शोक हो रहा है और यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं। गंगा जी को शोक हो रहा है, यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं। यस्य नास्ति बले तुल्यः पृथिव्यामपि कश्चन कथम शिखण्डिना श्रुत्वा न विदीर्येति यन्मनः। जिस वीर ने परशुराम जी को कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनायासी पीड़ित कर दिया वही शिखंडी के हाथ से मारा गया, ये कितने दुख की बात है। ऐसी बात है कहकर गंगा जी बहुत विलाप करने लगी। तब श्री कृष्ण ने आश्वासन देते हुए कहा, तो भगवान कृष्ण बोले उनको समझा सकते हैं कौन, गंगा जी कौन समझा सकता है, कृष्ण ही समझा सकते हैं, है ना, वे ही सबके स्वामी हैं, ईश्वर हैं। देवी धैर्य धारण करो, शोक न करो, तुम्हारे पुत्र भीष्म अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं, इसमें संशय नहीं है। ये महा तेजस्वी वसुदेव वशिष्ठ जी के साप से इन्हें मनुष्य योनि में आना पड़ा, अतः इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। देवी इन्होंने युद्ध में क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध किया, अर्जुन के हाथ से मारे गए, शिखंडी के हाथ से नहीं मारे गए, तो हर्ष की बात है, शोक की बात नहीं। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये शोक का कारण नहीं है, हर्ष का कारण है, कि शिखंडी के हाथ से नहीं मारे गए, किसके हाथ से मारे गए? अर्जुन के हाथ से मारे गए। तुम्हारे पुत्र भीष्म का जब हाथ में धनुष बाण, तुम्हारे पुत्र भीष्म जब हाथ में धनुष बाण लिए रहते उस समय इंद्र भी उन्हें युद्ध में नहीं मार सकते थे, ये तो अपनी इच्छा से शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में गए। तो ये हर्ष की बात है, अर्जुन ने भी उनको गौरव दिया, अर्जुन वैसे भी मार सकते थे भीष्म जी, लेकिन ये गौरव की बात है कि भीष्म जी ने अपना धनुष बाण त्याग दिया शिखंडी को देख करके, तब अर्जुन ने मारा, तो भीष्म जी को यश प्राप्त हुआ कि तभी वो मारे गए जब वो युद्ध नहीं कर रहे थे। और शिखंडी से उन्होंने पहले कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि अंबा है पिछले जन्म की स्त्री है, तो मैं उसके प्रति स्त्री भाव भी रखता हूं। देवी संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते थे, इसलिए तुम भीष्म जी के लिए शोक मत करो, ये तुम्हारे पुत्र भीष्म वसुओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, अतः इनके लिए चिंता रहित हो जाओ। इस जब भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी ने इस प्रकार समझाया, गंगा जी को दो लोगों ने समझाया, कौन है दो लोग? व्यास जी और कृष्ण, तब नदियों में श्री गंगा जी शोक त्याग कर अपने जल में प्रवेश कर गए, शोक त्याग कर दिए। इत्युक्त्वा साधु कृष्णेन व्यासेन तु सरित्वरां त्यक्त्वा शोकं महाराज स्वं वारयवे ततारहां। श्री कृष्ण आदि सब राजा गंगा जी का सत्कार करके उनकी आज्ञा लेकर वहां से लौट आए। तो मैंने इतना जो है आप लोगों को सुनाया है, तो अभी कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं हाँ जी आप लोग
बहुत ही आश्चर्य की बात है। प्रभु जी देखते हैं जैसे यही प्रसंग भीष्मदेव का शरीर छोड़ने का यहाँ पे है और भागवत पुराण में भी प्रथम स्कंद में है, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, प्रार्थनाओं में डिफरेंस है, वहां भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा, तो ऐसा डिफरेंस किस वजह से?
ये अच्छा प्रश्न है। तो ऐसी बहुत सी घटना है जो महाभारत में और भागवत में मतलब अंतर मिलता है। जैसे भागवत में ये बताया यह कि विदुर जी को जो है दुर्योधन ने बहुत अपशब्द कहे और वो घर त्याग करके चले गए, तो विदुर जी थे ही नहीं महाभारत युद्ध में, और विदुर जी भी 36 साल के बाद आए, है ना। लेकिन महाभारत में तो ये वर्णन है कि विदुर जी थे, वो युद्ध भूमि में नहीं थे, युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन महल में थे और धृतराष्ट्र के साथ विदुर जी भी थे। तो इस तरह की बहुत से जो है अंतर हैं घटनाओं के। तो जीव गोस्वामी इसका जो है उत्तर यही देते हैं, ये कल्प भेद से ये अंतर मिलता है। अलग अलग शास्त्रों में भगवान की लीलाएं मिलती हैं, भगवान राम का भी चरित्र अलग अलग शास्त्रों में मिलता है, तो अलग अलग प्रकार का मिलता है, और वो भी आप मिला नहीं सकते कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा ये माने तो वो नहीं हो सकता। तो फिर यही समझना, कृष्ण के भी चरित्र सभी शास्त्रों में मिलते हैं और ऐसे अलग अलग मिलते हैं कि आप उनको मतलब समन्वित नहीं कर सकते कि भाई ये भी मान ले और ये भी मान ले, तो ये भी ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर यही है कि कल्प भेद से ये सब जो है मतलब इन लीलाओं का वर्णन हुआ है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? हाँ जी हाँ जी हाँ बोलिए। चल
प्रभु जी दो तीन प्रश्न है।
अच्छा दो तीन हाँ बोलिए।
हाँ प्रभु जी, एक तो ये था कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान भी समझाए, वेदव्यास भी समझाए, तो तब भी समझे नहीं, भीष्म पितामह के पास गए। तो हालांकि इसमें एक तो उत्तर सुनने के लिए मिला था कि भगवान की इच्छा थी कि ये भीष्म पितामह को यश देने के लिए उनसे सुनवाना चाह रहे थे, तो श्रवण करने का प्रभाव युधिष्ठिर महाराज पर क्यों नहीं पड़ा भगवान से व्यास देव जी से?
हाँ ये लीला है, भगवान की लीला है, और भगवान कई बार जो है अपनी महिमा को घटा देते हैं और अपने भक्तों की महिमा को बढ़ा देते हैं, और ये उनकी इच्छा होती है कि किस समय किस भक्त की महिमा को ज्यादा बढ़ाएं। क्योंकि एक समय था कि प्रहलाद महाराज की महिमा को सबसे ज्यादा बढ़ा दिया, ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर पा रहे हैं, शिव जी प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, नारद जी प्रसन्न नहीं, सब स्तुति कर रहे हैं, और नरसिंह भगवान क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो प्रहलाद महाराज को सबसे ऊपर उठा लिया। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो जानते हैं कि ये सब भगवान की ही महिमा है और किसी की महिमा नहीं। भक्त लोग जो है भगवान की लीला को समझते हैं, उनके अंदर ये नहीं आता कि मैं करता हूं और मेरा एक गुण है ना। और भीष्म जी ने भी ये कहा था कृष्ण से कि आपके सामने मेरा जो है मतलब बोलना उचित नहीं है, मेरा बोलना उचित नहीं है आपके सामने, और मेरे शरीर में इतने बाणों की जो पीड़ा हो रही है उससे भी मुझे बोलने में बड़ी बाधा पड़ेगी। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा यश तो पहले से ही प्रसिद्ध है कि मैं सबको बुद्धि प्रदान करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको यश मिले तो मैं आपको वरदान देता हूं कि आपको बाणों की पीड़ा बाधा नहीं पहुंचाएगी और आप बोल सकेंगे। और
दूसरा था क्षत्रिय यदि युद्ध स्तर में मरता है तो क्या उसे जैसे ऋषियों को जैसे जो गति प्राप्त होता है वो क्षत्रिय को भी प्राप्त होता है?
क्षत्रिय अगर युद्ध में मारा जाता है, युद्ध करते हुए अगर मारा जाता है तो अपनी इच्छानुसार वो ऊंची गति प्राप्त करता है, तो नरक में तो नहीं जाएगा। नरक में जाने की किसी की इच्छा नहीं होती तो नहीं जाएगा, लेकिन किसी की भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग में जाएगा। तो इसे स्वर्ग की ही जो है ज्यादातर क्षत्रिय लोग जो स्वर्ग जाते हैं, लेकिन अगर किसी की मतलब ऐसी इच्छा है कि वो भगवान के धाम में जाए और उसके अंदर भोगों की इच्छा नहीं है तो भगवान के धाम में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और
युधिष्ठिर महाराज कितने दिन के लिए राज्य किए?
कितने दिन
तक राज्य किए?
कितने दिन तक राज्य किया युधिष्ठिर महाराज?
क्योंकि उसके बाद परीक्षित महाराज को राज्य देकर जो गए थे कितना समय किया होंगे?
युधिष्ठिर महाराज ने एक सेकेंड 36 साल तक राज किया ना, हाँ 36 साल तक राज किया। विदुर जी जब आए 36 साल के बाद तो उनको पता चला कि कृष्ण अपने परम धाम चले गए, तो उन्होंने पृथ्वी को त्याग दिया 36 साल। ठीक है, अच्छा
पीछे
हरे कृष्ण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर कथा के लिए। मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया जो भीष्म महाराज हैं वो इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तरायण का समय हो, उसमें प्रकाश का समय हो और शुक्ल पक्ष हो, तो एक भक्त के लिए तो ये सारी चीजें लागू नहीं होती है, तो इस प्रकार वो क्यों कर रहे हैं?
इनका प्रश्न अच्छा है। इसका उत्तर ये है, हाँ भक्त के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भीष्म जी उन योगियों को जो है ये शिक्षा देने के लिए कि जो भक्त नहीं है और योगी हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उनको ये गति दिखाने के लिए, ये विधि सिखाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। और जब समय भीष्म जी की सरसैया हुई थी तो देवता लोग हाहाकार करने लगे कि भीष्म जी जैसे महात्मा इस समय क्यों शरीर छोड़ रहे हैं, ये समय तो योगियों के लिए उचित नहीं है शरीर छोड़ने का। तो भीष्म जी ने कहा कि नहीं नहीं आप लोग चिंता मत करिए, मैं शरीर अभी नहीं छोड़ू। तो भीष्म जी ने ये जो कार्य किया है, हालांकि वो तो महाभागवत है तो उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई भी शरीर, कोई भी समय हो शरीर छोड़ने का। जैसे प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा तो दक्षिणायन का ही समय था, है ना, 14 नवंबर को शरीर छोड़ा था, तो दक्षिणायन का समय था क्योंकि 14 जनवरी के 6 महीने पहले दक्षिणायन का समय चलता है, तो उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वे सिखाना चाहते हैं कुछ दूसरे लोगों को ना। और कोई प्रश्न?
इसमें मुझे एक चीज और भी पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि भगवान ने कहा कि अब वसुलों को वापस जाएंगे, तो इसमें नर कुंवर मणि गरीब की जो स्थिति है उसमें भी देखते हैं कि उन्होंने भगवान के दर्शन कर वापस स्वर्ग लोकों को गए, बट इसमें तो होता है कि भगवान जो भक्त है वो आध्यात्मिक जगत को जाता है, इस प्रकार ऐसा लगता है कि वो जिस स्थान से होते हैं वापस वहीं चले जाते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत को जाते हैं?
अच्छा प्रश्न है। देखिए जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो उनकी कोई इच्छा नहीं होती है कि वे भगवान के धाम जाएं या इस भौतिक जगत में रहें, और भगवान की आज्ञा से भी जो है कहीं भी जाएं इस भौतिक जगत में, किसी भी स्थान में जाएं या आध्यात्मिक जगत में जाएं, उनके लिए कुछ ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है। तो पहली बात तो यही है कि भीष्म जी को जो है भगवान ने आज्ञा दी कि आप वहां जाइए, और ये 12 महाजन जो है इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, वो जो आध्यात्मिक जगत में नहीं है, जैसे ब्रह्मा जी हैं, नारद हैं, शिव हैं, तो ये सब जो महाजन 12 महाजन कहे गए हैं वो इसी ब्रह्मांड के अंदर ही हैं जो कि भागवत धर्म का प्रचार करते हैं, तो तो उसमें भीष्म जी नाम आता है, तो भीष्म जी भी इस भौतिक जगत के अंदर ही यमराज भी है ना, सुखदेव गोस्वामी है, तो ये सब जो है बारह महाजन है। और दूसरी बात है नरकुबर मणिगिरी, तो ये जो है कुबेर के पुत्र थे, तो अपने स्थान में गए, लेकिन फिर वर्णन आता है कि वहां से वीरोद्धव फिर गोलोक धाम में चले गए, वहां से फिर कुछ समय के बाद में गोलोक धाम में चले गए और स्निग्धकंठ और मधुकंठ के नाम से वहां पर कथा के वाचक बन गए। गोलोक धाम में भी कथा सुनते हैं सब लोग, ये मत सोचिए कि भागवतम क्लास यहाँ पर हो रहा है तो इसका महत्व जो यहीं पर है, गोलोक धाम में नहीं, गोलोक धाम में भी क्लास होता है, वहां पर जो है ये स्निग्धकंठ और मधुकंठ जो है ये कथा वाचक है, सुनाते हैं कथा, बस नंद महाराज भी सुनते हैं, राधा रानी भी सुनती हैं, वो भी बैठ करके सुनते हैं वहां पर, और कोई दूसरा काम तो है ही नहीं समझिए ना, वहां सब जो है सुनने वाले हैं, और कृष्ण की इस पृथ्वी में जो लीलाएं हुई हैं उनको सुनते हैं वहां जाकर के, इनका भी इतना महत्व है कि इन लीलाओं को वहां जाकर के सुनते हैं, बोलो धाना सुनते हैं, तो ये सुनाने वाली है इसने मधुकर्ण। ये नलकुबर मणिगिरी भी जो है ये वहां गोलोक धाम में है, ठीक है।
हरे कृष्ण, एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे भीष्म पितामह के जब समर शिखंडी उपस्थित थे तो उन्होंने विचार किया कि ये पूर्व जन्म में स्त्री थी तो मैं इसे युद्ध नहीं करूंगा, बट सामान्य उसको तो यही लगता है कि व्यक्ति वर्तमान जिस शरीर में उसी के आधार पर ही एक जो देह को जाना जाना चाहिए, तो उस प्रकार ऐसा क्यों सोच रहे हैं?
हाँ, भीष्म जी इस प्रकार से क्यों सोच रहे हैं, उन्होंने ऐसा विचार बना लिया, और अम्बा ने भी जो है यही विचार से तपस्या की थी कि मैं भीष्म जी की मृत्यु का कारण बनूं, तो भीष्म जी भी उसकी तपस्या के संकल्प को जो है झूठा नहीं करना चाहते थे, तो भीष्म जी ने भी उसकी तपस्या के संकल्प को पूरा करने के लिए विचार कर लिया कि मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा, और कारण फिर यही बना लिया कि चूंकि पिछले जन्म में वो स्त्री था, बल्कि इस जीवन में भी स्त्री था, शिखंडी स्त्री रूप में पैदा हुआ था, और फिर वो कैसे पुरुष बना उसकी एक लंबी घटना है कि कैसे उसको पुरुषत्व प्राप्त हुआ, तो अलग घटना है, ठीक है। श्री भीष्म भाग दी महामहोत्सव की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधिका रमण जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव कृष्ण बलराम गौर नताई की जय।